प्रिय श्रोताओ नमस्कार, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और हमें विश्वास है कि आप सब परमेश्वर के अनुग्रह से ठीक हैं और आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से तिमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन को हम आरंभ करें, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले। बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई, सच बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई। अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई, यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से दूसरा तिमोथियुस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका लेखक पौलुस है। और अब तक हमने इस अध्ययन में देखा है कि पौलुस तिमोथियुस को इस पत्री के माध्यम से उसे बताता है कि किस प्रकार उसे एक अच्छा मसीही जीवन जीना है। पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि लोग परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते हैं, वे अपने कानों के खुजली के अनुसार जैसा चाहते हैं वैसा ही प्रचारक ढूंढ लेते हैं। आज हम सब अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है। हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जिन्हें आपने अवसर दिया है कि आपके जीवित और सच्चे वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन तिमोथियुस के पत्री से करते हैं। हमारी विनती है कि आप सबको अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि आज हम जो कुछ भी सुनते हैं समझ सकें, ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार चलने पाएं। हम विनती करते हैं अपने उन श्रोता भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं, निराश और परेशान हैं, किसी प्रकार की चिंता और दबाव में हैं, तनाव में हैं, पारिवारिक समस्याओं में हैं। पिताजी, आप उन्हें अपनी शांति प्रदान करें, उन पर अपनी कृपा दृष्टि करें, ताकि वे भी स्वस्थ और भले चंगे होकर आज के वचन के द्वारा आशीषों को प्राप्त कर सकें। आज के समय को आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हम दूसरे तीमोथियुस की पत्री उसके 4 अध्याय और उसके 6 पद से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह अध्ययन आज हम सब के लिए इस पत्री का अंतिम अध्ययन होगा। पौलुस ने अपना शोक गीत स्वयं लिखा था, जिसके 2 भाग हैं, उसका सांसारिक जीवन और भविष्य अर्थात अनंत जीवन की आशा। प्रचार कर दुख उठा, धर्मशास्त्र की शिक्षा से न टल। पौलुस का अंत समय अब आ गया था और उसे अपने बाद एक विश्वास योग्य योद्धा खिलाड़ी की आवश्यकता थी, जो प्रभु से एक दिन मुकुट पाए और उसके प्रकट होने की आशा से प्रेम रखे। तो आइए आप मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा तीमोथियुस की पत्री उसके 4 अध्याय और 6-8 पद को हम पढ़ें। लिखा है, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। कहता है, अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं। यदि आप रोम के उस वध कक्ष में होते या जाते तो वहां चारों ओर रक्त ही रक्त फैला हुआ आप देखते। सच तो यह है कि उसे वध के खंड पर सिर रखते देखना और उस भीमकाय रोमी जल्लाद के हाथ में उठी हुई तलवार जो पलक झपकते ही नीचे आई और उसकी सिर धड़ से अलग एक टोकरी में जा गिरा तथा उसकी देह दूसरी ओर तड़प रही है, देखकर रूह कांप उठती है। पौलुस कहता है, तूने बस यही देखा है और कुछ नहीं। वह वास्तव में बलि की वेदी थी और वह अर्घ के समान उंडेला गया। अर्घ एक प्रकार की बलि थी। पौलुस ने फिलिपी की कलिसिया को लिखे पत्र में भी इस उपमा का उल्लेख किया है। मेरे प्रियो, वह उसका पहला बंदीकरण था जब वह पहली बार बंदी बना था और उसे बचने की आशा नहीं थी। फिलिपियों के पत्र 2 अध्याय उसके 17 पद में उसने लिखा है, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं और तुम सब के साथ आनंद करता हूं। वह तो चाहता था कि उसका जीवन बलि हो जाए। वह अब कहता है अपने जीवन के अंत में कि उसका जीवन अर्घ के समान उंडेला जाता है। यह अर्घ क्या है? परमेश्वर ने अर्घ चढ़ाने के संबंध में इसराइल को कोई भी विशेष निर्देश नहीं दिए हैं, परंतु निर्गमन और लय व्यवस्था की पुस्तक में इसका उल्लेख बार बार किया गया है। मदिरा बलि की वस्तु के ऊपर डाली जाती थी और पीतल की वेदी बहुत गर्म होती थी, क्योंकि उसके नीचे आग जलती थी। गर्मी के कारण मदिरा भाप बनकर ऊपर उड़ जाती थी। पौलुस के कहने का अर्थ ठीक यही था, मैंने अपने आप को प्रभु यीशु की बलि पर उंडेल दिया है, मेरे लिए तो यह कुछ नहीं परंतु उसके लिए सब कुछ है। मेरे मित्रों, पौलुस का जीवन शीघ्र ही विलोप होने वाला था, परंतु मसीह की छवि सदा दिखती रहेगी। पौलुस ने यह एक अति उत्तम उपमा काम में ली है। बहुत से विश्वासी चाहते हैं कि उनकी यादगार में कहीं पत्थर लगाया जाए या गाड़ा जाए या किसी इमारत का नाम उसके नाम में रखा जाए। पौलुस की रुचि ऐसे किसी काम में नहीं थी। उसने कहा, मेरा जीवन अर्घ के समान उंडेला जाता है, अर्थात पौलुस नहीं प्रभु यीशु का महिमान्वन ही होना है, प्रभु यीशु को ही महिमा मिलना है। यह धर्मशास्त्र का एक महान गद्यांश है। पौलुस का शोक गीत दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में पौलुस अपने अब तक के जीवन का पुनरालोकन करता है, वध किए जाने के कुछ समय पूर्व। तब दूसरा भाग उसके अनंत जीवन की आशा है, सांसारिक जीवन और अनंत जीवन को अलग करने वाली सांसारिक मृत्यु। मेरे प्रियो, पौलुस अपने जीवन को तीन विभिन्न भागों में संयोजित करता है। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, वह एक अच्छा योद्धा था। उसके जीवन में एक युद्ध अभी लड़ा जाना था और उसे जीतना भी था। अब अपने जीवन के अंत में वह कहता है, मैं अपने प्रभु यीशु का एक अच्छा योद्धा रहा हूं। मेरे प्रियो, हम सबको ऐसा ही होना है, युद्ध लड़ना है और हर एक विश्वासी को परमेश्वर के वचन का रक्षक होना है तथा बाइबल के महान तथ्यों के लिए हमें खड़ा होना है। पौलुस कहता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। जीवन एक युद्ध ही नहीं, एक दौड़ प्रतियोगिता भी है। पौलुस मुकुट पाने के लिए एक अनुशासित खिलाड़ी था और इस दौड़ में पौलुस अपनी देह को वश में किए हुए था। वह अपना जीवन इस प्रकार जी रहा था कि अयोग्य न ठहरे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय उसके 27 पद में उसने कहा, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय उसके 1 और 2 पद में पौलुस लिखता है, मैं इब्रानियों का लेखक पौलुस को मानता हूं, इसलिए मैंने यहां पर कहा है कि पौलुस लिखता है। आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरे से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। और अपने जीवन के अंत में वह इस योग्य था कि वह कह पाए, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। जी हां, उसने परमेश्वर की योजना को पूरा कर लिया था। मैंने विश्वास की रखवाली की है। उसका जीवन वरन हमारा जीवन भी परमेश्वर की धरोहर है और पौलुस एक अच्छा भंडारी भी रहा है। उसने विश्वास की रखवाली की है। वह परमेश्वर के वचन के महान सत्य और शिक्षाओं से टला नहीं, वह पीछे नहीं हटा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि ये कथन कैसे महान है। अब हम पद 6 में उसकी उद्घोषणा को फिर से देखें। मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। यह कूच करना कलीसिया के उठाए जाने के जैसा नहीं है। वह मृत्यु के द्वार से प्रस्थान करेगा, परंतु कलीसिया के कूच करने अर्थात उठाए जाने के समय जीवित विश्वासी मृत्यु के द्वार से प्रवेश नहीं करेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 51 और 52 पद में पौलुस कहता है कि कलीसिया के उठाए जाने के समय हम पलक झपकते ही बदल जाएंगे। मूल भाषा में मृत्यु का अर्थ है बंधन मुक्त होना। जैसे जहाज का लंगर उठाकर उसे समुद्र में जाने के लिए मुक्त कर दिया जाता है। मेरे प्रियो, पौलुस का विचार आज की प्रचलित मानसिकता से सर्वथा भिन्न था। आज कहा जाता है कि मृतक मनुष्य अब समुद्र पार करके बंदरगाह पर आया है। उसकी यात्रा के कष्ट सब समाप्त हो गए हैं, परंतु पौलुस सर्वथा विपरीत बात करता है। हमारा जीवन बंदरगाह पर बंधा हुआ है, हम कहीं नहीं जा सकते हैं, हम इस पृथ्वी पर बंधे हुए हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर की संतान के लिए मृत्यु बंधन मुक्ति है। पौलुस कहता है कि मेरे वध करने को मत देखो और लहू आपका जी न मितलाए, न घबराए। मैं एक जहाज के समान हूं जो बंदरगाह पर बंधा है। मृत्यु द्वारा मैं मसीह से भेंट करने चल पड़ूंगा, जो कहीं इससे अच्छा है। आगे कहता है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। यह सकारात्मक पक्ष है। मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस भविष्य को निहार रहा है। वह धार्मिकता के मुकुट की आशा में है। यह पुरस्कार है जो वह एक दिन पाएगा। मेरे विचार में वह मुकुट उसे अभी प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु उसका मुकुट प्रभु के पास सुरक्षित है। नए नियम में ऐसे अनेक मुकुटों का उल्लेख किया गया है। उदाहरण के लिए पहला कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय उसके 24 और 25 पद में लिखा है कि दौड़ में दौड़ने वाले तो अनेक हैं, परंतु मुकुट एक ही को मिलता है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 1 पद में आत्माओं को जीतने के लिए भी मुकुट है। उसे मनुष्यों को प्रभु यीशु के पास लाने के लिए मुकुट दिया जाएगा। इसमें दो राय नहीं कि पौलुस को अनेक मुकुट मिलेंगे। कहता है धर्म का मुकुट, जी हां, धर्मी जीवन का मुकुट। पौलुस को यह मुकुट अवश्य मिलेगा, उन सबको जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। आपकी धारणाओं के कारण नहीं, आप चाहे प्रभु राज के बाद के जीवन में विश्वास करें या प्रभु राज से पूर्व, या विश्वास ही न करें कि प्रभु राज होगा, इनके लिए मुकुट नहीं है। मुख्य प्रश्न है, क्या आप उसके प्रकट होने की आशा के प्रेमी हैं? उसके प्रकट होने से आप तब ही प्रेम करेंगे जब आप उससे प्रेम करेंगे। मेरे मित्रों, क्या आप उसके साथ घनिष्ठ संबंध में हैं? क्या आप उसे जानते हैं? क्या आपने उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है? क्या आपने उससे कभी कहा कि आप उससे प्रेम करते हैं? मेरे विचार में पौलुस से प्रतिदिन प्रभु से कहता होगा कि वह उससे प्रेम करता था, क्योंकि पौलुस कभी उसका बैरी हुआ करता था, परंतु अब नहीं। मुझे तो उसके प्रकट होने के प्रेम का मुकुट चाहिए जो सबसे अधिक चमकता है। मेरे मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे पौलुस के अंतिम वचन। पिछले पद में हमने विजय का स्वर सुना था, परंतु अब विजय का स्वर मध्यम पड़ गया है। पौलुस वास्तविकता का सामना कर रहा है। तो आइए हम पढ़ें दूसरा तिमोथियुस 4 अध्याय उसके 9 पद में, मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर। पौलुस ऐसा क्यों कहता है? उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। मैं जब उस आद्र अर्थात अंधेरी बंदी गृह में देखता हूं, तब मुझे पौलुस के ये शब्द स्मरण होते हैं कि वह क्यों अकेलापन महसूस करता है। दूसरा तिमुथियुस के पत्र 4 अध्याय के 10 पद में लिखा है, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्लोनिके को चला गया है, क्रेसकेंस गलातिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। देमास चला गया था क्योंकि वह उस गर्मी को सहन नहीं कर पाया था। वह पौलुस का साथ छोड़कर थिस्लोनिके नगर को चला गया था, तीतुस दलमतिया की ओर। मैं इन अन्यों के बारे में तो नहीं जानता, परंतु तीतुस के जाने का कारण वैध था। पौलुस ने उसे अपनी ओर से सेवा करने के लिए भेजा था। मैं क्रेसकेंस के पक्ष में कुछ भी नहीं कह सकता। दूसरा तिमोथियुस 4 अध्याय के 11 पद में लिखा है, केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। ध्यान दें, केवल लूका मेरे साथ है। भला वृद्ध वैद्य पौलुस के साथ अंत समय तक था। मरकुस को लेकर चला आ। पौलुस दूसरी प्रचार यात्रा में मरकुस को साथ नहीं ले गया था, परंतु अब उसे बोध हुआ कि वह गलत था। अतः अब वह कहता है कि मरकुस सेवा के लिए बहुत काम का है। मैं प्रसन्न हूं कि वह अपने अंतिम वचनों में यह कहता है। दूसरा तिमोथियुस की पत्री 4:12 में हम पढ़ते हैं, तुखिकूस को मैंने इफिसूस भेजा है। पौलुस ने उसे इफिसूस इसलिए भेजा था क्योंकि वह वहां का एक प्रभु का दास अर्थात सेवक था। वह एक पादरी था। वह अधिक दिन रोम में नहीं रुक सकता था। उस पर अपनी कलीसिया का भी उत्तरदायित्व था। अब ध्यान दें, यहां कुछ प्रकाशन है। दूसरा तिमोथियुस 4:13 में, जो बागा मैं त्रोआस में करपूस के यहां छोड़ आया हूं, जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चर्म पत्रों को लेते आना। पौलुस ने त्रोआस से अपना बागा अर्थात कपड़ा मंगवाया। इससे उसके कष्टों का प्रकाशन प्राप्त होता है। वहां पर मई जून के महीनों में बहुत ठंड था, अर्थात ठंड होता है। यह उसकी शारीरिक आवश्यकता थी कि उसे कपड़ा मिले। तब वह कहता है, पुस्तकें विशेष करके चर्म पत्र, उसे अपने मन को शांत करने के लिए पढ़ने की आवश्यकता थी। दूसरा तिमोथियुस 4:14 में लिखा हुआ है, सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की हैं, प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। सिकंदर का प्रतिफल उसकी आशा के अनुकूल न होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर उसे दंड देगा। तब वह दूसरा तिमोथियुस 4:15 में कहता है, तू भी उससे सावधान रह, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया है। मेरे प्रियो, पौलुस तिमोथियुस को उससे अर्थात सिकंदर से सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि वह मुंह से मीठा और पीठ से अर्थात पीठ के पीछे छुरी घोपने वाला व्यक्ति था। उससे अति सावधान रहने के लिए उसे कहता है। दूसरा तिमोथियुस 4:16 में हम पढ़ते हैं, मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा देना ना पड़े। मेरे पहले प्रतिवाद के समय, या तो यह इस अभियोग की आरंभिक सुनवाई थी या 3 वर्ष पूर्व के अभियोग की बात है। उस समय पौलुस अकेला ही था। दूसरा तिमोथियुस 4:17 में हम पढ़ते हैं, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातीय सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। मेरे मित्रों, पौलुस ने अपना बागा अर्थात वस्त्र मंगवाया था उसकी शारीरिक आवश्यकता के लिए। पुस्तकें उसकी मानसिक आवश्यकता को पूर्ण करती थी। अब उसकी आत्मा के लिए वह कहता है कि प्रभु मेरा सहायक रहा है। हम सबको चाहे कैद में हो या बाहर, इन 3 क्षेत्रों में आवश्यकता होती है। यह कहना कैसा उत्तम है, प्रभु मेरा सहायक रहा है। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। उस समय तक उसका वध नहीं किया गया था। दूसरा तिमोथियुस 4:18 में हम पढ़ते हैं, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। पौलुस जानता था कि वह स्वर्ग जाएगा। पौलुस इन मित्रों के संदर्भ के साथ ही तिमोथियुस को लिखे अपने व्यक्तिगत पत्र का अंत भी करता है। दूसरा तिमोथियुस 4:19-22 में लिखा है, प्रिस्का और अक्विला को और उनेसिफुरुस के घराने को नमस्कार। इरास्तुस कुरिंथियुस में रह गया और त्रुफिमुस को मैंने मिलेतुस में बीमार छोड़ा है। जाड़े से पहले चले आने का प्रयत्न कर। यबुलुस और पुंदेस और लिनुस और क्लोदिया और सब भाइयों का तुझे नमस्कार। प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे, तुम पर अनुग्रह होता रहे। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए कि वह फिर तिमोथियुस से आने का आग्रह करता है शीत ऋतु से पूर्व। जी हाँ, यहां प्रेरित पौलुस के मरण गीत का अंत होता है और इस प्रकार से हम देखते हैं कि दूसरा तिमोथियुस की पत्री के अध्ययन का भी समय समाप्त होता है। और मैं आशा करता हूं कि आप सब ने अवश्य ही दूसरे तिमोथियुस की पत्री के द्वारा अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किए हैं। पौलुस अपने मरण शया से इन सारी बातों को कहता है और आज हमारे लिए यह बहुत ही चुनौती की बात है कि हम परमेश्वर के दास के द्वारा अपने जीवन को फिर से प्रभु की निकटता में लाएं। मेरे प्रियो, आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में एक नई पुस्तक के साथ जब हम अध्ययन करेंगे तो आप उसमें अवश्य शामिल होंगे। प्रभु आप सबके साथ हो।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
लंबा है सफर अपना, बढ़ते ही जाना है ताज रखा फिर, उस ताज को पाना है, उस ताज को पाना है। अब कस लो कमर अपनी, शैतान से लड़ाई वो क्रूस निशाना है, वो क्रूस निशाना है, मंजिल वो हमारी है, जो क्रूस पे जाती है वो राह हमारी। दुनिया ये नहीं अपनी, सब कुछ बेगाना है, कुछ रोज यहाँ रहना फिर छोड़ के जाना है, फिर छोड़ के जाना है, रहबर वो हमारा है, पहचान पुरानी